Açık konti kaleye. Çobis. Çobis meyse, çobis cuntak. Tamam. मम्मा के बारे में पढ़ेंगे. ये जो किताब है, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती प्रस्तावना. पहचान आदरणीय माँ सरस्वती की. जगदीश भाई का लिखा हुआ ये प्रस्तावना लिखी हुई. प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्व महान है. यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है. किसकी महिमा? शिरोमणि पवित्रता, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय. जिन्होंने उसके मुखमंडल को देखा उससे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी. उसको देखकर तो महा अज्ञानी भी कह उठता था, माँ ओ माँ, तेरी ठंडी छा, तेरी शीतल बाह, तेरी हा में हा, ओ माँ, तू ले जा चाहे जहां, हमें दिखता आसमां, भूल गया जहां, माँ ओ माँ. कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित किया हो. जिस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता हो. वे निर्मल नयन जिसमें योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां जिस पर पड़ती उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती. उसका वह दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी. उसकी चाल ढाल भी ही ऐसी थी कि जिसमें योग और रास मिलकर उसे इतना भव्य दिव्य सुसभ्य बनाते थे कि बात मत पूछिए. जिस किसी को भी उसका स्पर्श मिला उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रिय चंचलता शांत हो चली. जिस समय किसी ने उसके कमरे में प्रवेश किया उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वो समाधिस्थ है, तपस्यारत है, अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए है. क्या जादू था उसकी तस्वीर में, क्या सुगंधि थी उसके व्यवहार में, कैसी महक थी उसके कर्मों में. जिसने उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा उसका तो जीवन ही सफल हो गया. अतः हम सभी का कैसा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा वत्स भी है और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी है. लोग जिस देवी को विद्यालयों के रूप विद्यादायिनी के रूप में विद्या का वरदान पाने के लिए पुकारते हैं, स्वयं उन्हीं के पुनीत हाथों से हमने अमृत पिया, स्वयं उनकी मुख वीणा से ज्ञान की स्वर्ग सुखदायिनी झनकार सुनी, उनके वरद हाथों ने हमारे सिर पर प्यार बरसाया, उनकी ज्ञानमय गोद के हम सुत हैं. हमारे इन नेत्रों ने सरस्वती को इस धरा पर खड़े बैठे चलते देखा. हमने यदि और कुछ भी न पाया क्या यह कम बात है? संसार में इससे अधिक सुंदर दृश्य और कोई हो सकता है क्या? जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी. चंदा भी देर से जाता था जब वह रात भर शिव पिता को याद करती थी. अरे वे ही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए. गौरी वे ही थी, हिमराज की वह पुत्री, ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थी. जिसने उन्हें साक्षात नहीं देखा उसने क्या देखा? जिसे संसार आदि देवी, अंबे मैया, इव हव्वा इत्यादि नाम से याद करता है। उन्हें देखने का यही तो मौका था। हम उनके संग संग रहे, उनके हाथों से पले, उनकी छत्र छाया में खेले। वे दिन कितने निराले थे, वह हमारे सौभाग्य की कितनी सुंदर घड़ी थी। उन जैसा रोमांचकारी अनुभव तो और कोई हो ही नहीं सकता। भारत और भारत की नारी की वह शान थी, योगियों में वो सर्वमहान थी। धर्म दर्शन मजहब और ईमान थी, वह दिव्य गुणों की खान थी। वह मादरे जहान थी, वर्ल्ड मदर। वह न होती तो कुछ भी ना होता। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुनकर सभी यज्ञवत्सों को समझाती थी। वह तो उनके सामने ज्ञान एवं योग का नमूना थी। सभी यज्ञवत्सों को संभालने के लिए वही तो निमित्त थी। उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समकक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान बिना वादन का अधिकार था। उन्हें मातेश्वरी ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला, भिन्न भिन्न संस्कार वाले यज्ञवत्सों को संस्कारों की भट्टी में से उन्हीं ने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला माँ, संतोषी माँ और अन्नपूर्णा थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के युग्म मनके में स्थान देते थे, उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते थे तथा आदरणीय मानते थे। उन्हीं को आगे रखकर वे उदाहरण देते थे कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों माताओं को आगे रखे। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते। मैं लगभग 50 देशों में गया। रूप लावण्य में अनेकानेक सुंदर नारियां भी देखी होगी, क्योंकि आंख बंद करके यात्रा तो नहीं करता था। विद्वत्ता, समाज सेवा, प्रशासन और वक्तृत्व में अग्रगणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था, उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पतित पुनीत हंस वर्ण की थी, पवित्र पुनीत हंस वर्णी की पर नकी थी। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहेंगे माँ। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो भी उनमें आध्यात्मिक चेतना जगी जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उनके तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे और उनकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती माँ। तो ये प्रस्तावना है। इस किताब में सभी के अनुभव लिखे हुए हैं बहुत सारे। देवी सरस्वती का सांस्कृतिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण। सरस्वती की क्या महिमा है भारत में? ज्ञान की देवी और सभी स्कूलों में उसका स्टैचू, चित्र, प्रतिमा, तस्वीर और ज्ञान देवी, विद्या देवी और क्या महिमा है? हंसवाहिनी और वीणावादिनी और बाकी जो सरस्वती के बाकी रूप भी तो सरस्वती के ही है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महालक्ष्मी, तीन रूप है उसमें। फिर वो जो सारे रूप है वो भी तो सरस्वती के ही रूप है। शीतला, सबको शीतला देवी का मंदिर है, सबको शीतल करने वाली, संतोषी, सबको संतुष्ट करने वाली, दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली या रक्षा करने वाली, और काली, विकारों पर विकराल रूप धारण करने वाली काली, महाकाली, और वैष्णव देवी, दिव्यता प्रदान करने वाली वैष्णव देवी, जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा, और ब्रह्मचारिणी और श्वेत वस्त्रधारिणी और हीनावादिनी, जितने रूप है वो सब आदि शक्ति के रूप है, आदि देवी के रूप है। शाक्त संप्रदाय है भारत में जो शक्ति की
हंसवाहिनी बोलते हैं, हंस जैसा वो मोती चुकता है।
हाँ, हंस जैसा मोती चुकता है, उसका वाहन हंस है, वाक देवी है वो, और लक्ष्मी है, वरदायिनी है, पापनाशिनी, अष्टभुजाधारी दुर्गा, शेर पर सवार दुर्गा, काली, सरस्वती, दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती, जितनी देवियां हैं, आदि आदि शक्ति कहा जाता है उसे। पार्वती वो है, अपर्णा वह है, चामुंडेश्वरी शिव शक्ति, अन्नपूर्णा भी वही है। भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्माननीय और अग्रगण्य है। सबसे आगे सुर असुर, सुर माना
देवता,
देवताओं को सुर कहा जाता है, योगी भोगी, प्रवृत्ति निवृत्ति, राजा प्रजा, सिद्ध पुरुष, योद्धा पुरुष, समस्त मानव कुल देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनसे सकल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती वंदना प्राचीन काल में गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या अध्ययन आरंभ होने से पहले सरस्वती वंदना की जाती है। प्राय हरेक विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि की भी देवी है, बुद्धिदायिनी, विद्या बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है। वे यहाँ तक मानते हैं कि यह देवी देवपद प्राप्त कराने वाली है और सर्व अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
जो फूल रात को उगते हैं ना, फूटते हैं, खिलते हैं, वही फूल से उनको पूजा किया जाता है और वो सफेद होता है,
सफेद फूलों से, अतः सरस्वती वंदना की जाती है। संस्कृत में श्लोक है, अभी भूल गया, ये याद। जो हंस पर सवार है, परमात्मा शिव की मुस्कान, मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्जवल वर्ण वाली जो वाणी स्वरूपा है, जिसका मुख मधुर मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विशोभित है, विभूषित है, और जिसके हस्तवीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षर माला से श्रृंगारित है, वे श्वेत कमल पर आसीन है, वे सरस्वती देवी आपको सर्व अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त कराने वाली है। भारतीय धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूढ़ता का नाश होकर सदबुद्धि, सदविद्या, वाक विकास और सद ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले साधक इस तरह से देवी सरस्वती की स्तुति करते हैं, जिसके हाथों में स्फटिक मणि की बनी हुई अक्षरमाला है, एक में अक्षरमाला है, एक में क्या है, वीणा है, एक में कमल है, अमृत कलश है, ग्रंथ है, श्वेत कमल, शुक और ग्रंथ सुशोभित है। शुक माना जो कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान तेजीप्यमान और रूपवान है, वो वाग देवी सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख में निवास करे। यह भी उनकी प्रार्थना में गाते हैं कि जो श्वेत कमल पर आसीन है, जिसके शरीर में श्वेत चंदन का लेप होता है, मुनिगण जिसकी अर्चना करते हैं और सर्व ऋषिवर सदा जिसका गुणगान करते हैं, वे सरस्वती देवी मुझ पर अति प्रसन्न हो। देवी सरस्वती की वंदना इस प्रकार से भी करते हैं कि शरद ऋतु से उत्पन्न कमल के समान मुखमंडल वाली और सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा वास करे। मैं उस वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। ऐसी सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है, भद्रकाली भी कहते हैं उसे। और वेद वेदांत, वेद वेदांत वेदांग, वेदांग ना माना वेदों के अंग, छह अंग जो है ना व्याकरण, छह अंग है वेदांत की, शिक्षा छंद, शिक्षा छंद नियुक्त, व्याकरण और एक ज्योतिषी और कला, ऐसे छह अंग है वेदांत वेदों के। तो वेदांग तथा विद्याओं की जननी को प्रणाम है। तो वेदांग की भी वो जननी है, कला की जननी, शिक्षा की जननी, ज्योतिष की जननी, नियुक्त एक होता है उसकी जननी, छंद की जननी, सबकी माँ, वेदों की माँ, वेदांत की माँ। वेदांतान याना माना उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदों का जहाँ अंत होता है, वेदों का जो सार है, चार वेदों का जो सार है वो 108 उपनिषदों में है, तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, अद्वैत वेदांत। तो उसकी भी वो माँ है, वेदों की, वेदांत की, वेदांग की, और तथा विद्याओं की जननी, जितनी विद्याएं हैं उन सब की भी जननी। हे महा भाग्यवती ज्ञान स्वरूप, कमल के समान विशालाक्षी ज्ञानदात्री सरस्वती। विशालाक्षी का भी मंदिर है शायद बनारस में, मुझे विद्या प्रदान करो, मैं तुम्हें नमन करता हूं। एक है भागवत, एक है देवी भागवत पुराण। तो देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ उसकी कहानी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन करते हुए ज्ञान के साधन सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया है कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, उसके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा है कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। देवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने ही इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में हम यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहयोगी अनन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चित्र बनता है। यह बात भी उसी एक चित्र चरित्र का ही एक चित्र है। इस यादगार में एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपने अनुभव में लिखा है कि एक बार साकार बाबा ने कहा कि छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुन कर ले आओ, तो माता जगदम्बा को अर्पित करना है और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना है। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? मैंने कहा, कुछ तो याद है। तब हमने ऐसा ही किया, हम काठियां चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले गए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुंचे तो माँ वहां बाबा की आगवानी मतलब वेलकम के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्ठा उनके चरणों के निकट रख दिया हाथ जोड़कर, अर्धखुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर उनकी आरती करना शुरू किया। अचानक ही यह देखकर माँ मुस्कुरा रही थी और कुछ हंस भी रही थी। अरे बस बड़ा आनंद आ गया, हमारी भक्ति पूरी हो गई, हमने भक्ति को माँ सरस्वती को अर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था कि उसका ना तो चित्रण हो सकता है और ना वर्णन। हमें ना धरती भासित हो रही थी, न समय की सुधि थी। साक्षात सरस्वती माँ को इन नैनों ने निहारा और इस मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हैं कि माँ ने कितना प्यार किया होगा। सरस्वती का निवास स्थान, सरस्वती कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? पांडवों में ऋग्वेद के अनुसार, चार वेदों में ऋग्वेद, वाक कला की ईश्वरीय वाक देवी का नाम सरस्वती है। वाक देवी सरस्वती का वास स्थान तीन है, एक पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की वाक देवी का नाम इला है, स्वर्ग की वाक देवी का नाम भारती है, अंतरिक्षवासी वाक देवी का नाम सरस्वती है। और ये भाषा भी कोई साधारण भाषा नहीं है, क्लिष्ट हिंदी है, बहुत मुख में क्लिष्ट कठिन हिंदी है, तुरंत नहीं आता है शब्द इधर उधर होते हैं। देवी सरस्वती का मूल स्वरूप, देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदिशक्ति परमेश्वरी है। परमेश्वर नाम तो सुना है, परमेश्वरी, ईश्वरी परमेश्वरी कहा जाता है उसे। उसकी अभिव्यक्ति सृष्टि पर तीन रूपों में होती है, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। ये तो गायन है, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। हमेशा शाक्त होते हैं और वैष्णव, उनमें लड़ाई होती है। शाक्त अर्थात जो देवी के भक्त है, वैष्णव अर्थात जो कृष्ण के भक्त है या राम के भक्त है, विष्णु के भक्त मुख्यतः। कृष्ण के भक्त कहते हैं कि इस संसार को पार लगाने वाला जो है वो कृष्ण है, इस जगत की नैया का जो खिवैया है वो कृष्ण है, बिना कृष्ण के तुम जगत से पार नहीं हो सकते। तो इसके विरोध में देवी के भक्त क्या कहते हैं कि हमारी देवी तो महारानी है, वो थोड़ी खिवैया, वो उसने खिवैया रखा है कृष्ण को खास, वो थोड़ी पार लगाएगी, बैठकर नैया चलाएगी क्या वो? वो तो महारानी है, अधिष्ठात्री है इस जगत की, उसके आदेश से श्री कृष्ण सबको संसार से पार लगाता है। ऐसी लड़ाई दोनों सांप्रदाय में हमेशा, वो कहता है हम बड़े हैं, ये कहते हैं हम बड़े हैं। वो कहते हैं कि सभी अवतार जो है 24 अवतार, उसमें विष्णु के अवतार है सारे, विष्णु मुख्य है। उसमें से भी कुछ सांप्रदाय ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि विष्णु का भी आदि जो है वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वो संपूर्ण परमात्मा है, वो गोलोक में निवास करता है। जैसे इस्कॉन जो है ना, एक संस्था हरे कृष्ण, वो इस तरह से उनकी मान्यता है कि श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण के वो 3 अवतार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर वो विष्णु के वो 24, पर उन सब में मुख्य जो है वो श्री कृष्ण है। उनका जो हरे कृष्ण हरे राम मंत्र है उसमें राम कौन है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, वो राम कौन है? वो राम नहीं है, वो श्री कृष्ण, वो राम नहीं है, त्रेता वाला राम है नहीं, वो बलराम के लिए राम कहा हुआ है। अगर आप उस संस्था में जाओ और उनसे बात करो या उनके नजदीक जाओ तो पता चलेगा वो राम को इतने बहुत कम मानते हैं, कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं, और वो देवी को तो बिल्कुल भी मानते नहीं, देवी तो जैसे उनके लिए कुछ है ही नहीं, प्रभु जी पुकारते एक दूसरे को। तो उस संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, बाकी सब उसके अवतार है। तो वो एक, परंतु जो देवी के भक्त है वो कहते हैं कि संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वो आदि शक्ति है, उस शक्ति से ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले हुए हैं, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उससे निकले हुए, तो इस संसार की जो आदि शक्ति है वो देवी है। इसके लिए उसकी अर्चना पूजा अलग है। परंतु एक बात है, जो वैष्णव है वो जरूरी, वो कभी शिव की पूजा नहीं करते, शिव की भक्ति नहीं करते, वो शैव और वैष्णव में बहुत कट्टर विरोध है, दोनों का सब कुछ विरोध है, क्योंकि ये विष्णु के भक्त अपने आप को सभ्य मानते हैं और वो शिव के जो भक्त है वो जैसे असभ्य है उनके लिए। परंतु जो शाक्त है, जो देवी के भक्त है, वो हमेशा शिव को भी मानते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ है, शिव को हमेशा मानेंगे, विष्णु को नहीं मानते, गणपति को भी मानेंगे। तो ऐसे संप्रदाय बहुत सारे जो भारत में है। तो उसकी अभिव्यक्ति सृष्टि पर तीन रूपों में होती है, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। इसमें उसमें यह भी कहा हुआ है कि पराशक्ति, आदिशक्ति, पराशक्ति अर्थात पराशब्दी अर्थात परे रहने वाली, परा मनोविज्ञान, पैरा साइकोलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं, परा पैरा उधर वर्ड है, इधर है परा, परात्पर कहा जाता है, हिंदी में एक शब्द है परात्पर परमात्मा, परात्पर अर्थात परे थे परे थे, जो उसके भी परे जो है वो परात्पर, परात्पर अर्थात परे से परे और उसके भी जो परे है वो परात्पर, सबसे परे। तो आदिशक्ति का परिशुद्ध और सतोगुण गुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। अभी देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन, क्या क्या नाम है सरस्वती के जितने हमने सुना है उसके अलावा? गायत्री भी सरस्वती को कहा जाता है, उमा, पार्वती, अपर्णा, कामदेव, कामधेनु, भारती, कात्यायनी, वागीश्वरी, जय गीत भी है ना, जय शारदे वागेश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी और ब्रह्मा, ये ब्राह्मी, शैल सुते, ऐगिरी नंदिनी, विश्व विनोदिनी, शैल सुते, शारदा, कामधेनु, वेद गर्भा, धनीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिका इत्यादि इसके नाम है, वीणा पाणी, विद्यादायिनी, विपुल मंगलदानी शिले, बुद्धिधात्री, आकाशगामिनी इत्यादि इनका गायन है। देवी सरस्वती के गुण और शक्ति है। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली है और बोध स्वरूपिणी है। इनकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी सरस्वती संगीत कला साहित्य की अधिष्ठात्री है। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है। सप्त प्रकार के स्वर से इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये सात प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती है, इसके लिए सरस्वती कहलाती है। सरस्वती, देवी सरस्वती की कृपा, जिस पर इनकी कृपा होती है वह महाविद्वान बन जाता है, कवि बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, वाक कला प्रवीण बन जाता है। इससे संबंधित अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि बच्ची, तुम किसी योग्य पुरुष की जिह्वा पर कविता शक्ति बनकर निवास करो। तो किसके मुख पर गई वो जिह्वा पर? तब सरस्वती जी ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार योग्य व्यक्ति की खोज में चल पड़ी। खोजते खोजते उन्होंने एक नदी के तट पर तपस्या में लीन ऋषि वाल्मीकि को देखा और उन पर प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर उपस्थित हुई। तब महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमंग मगहम शशिश्वती समः। इसी तरह महाकवि कालिदास की जीवन कहानी में भी इससे संबंधित एक प्रसंग है। महाकवि कालिदास बनने से पहले एक गडरिया थे, शेफर्ड चलाने वाले। जब उन्होंने काली माँ की आर्चरवा की आराधना की तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर कहा, हे वत्स, क्या वर चाहिए, मांगो। उन्होंने कहा, माँ मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। काली माँ ने कहा, धन कनक राज्य वैभव अधिकार नहीं चाहिए। कालिदास ने कहा, नहीं माँ मुझे विद्या बुद्धि ही चाहिए। तब माँ काली ने उनके जीव पर ओम अक्षर लिखा, तत्क्षण उनके मुख से ये शब्द निकले, श्लोक है। इसके बाद बुद्धिहीन गडरिया से वह बुद्धिवान महाकवि कालिदास बन गए। काली माँ जो विद्या देवी सरस्वती का ही अन्य रूप है, जिसकी जिह्वा पर सन्निविष्ट हुई, अतः कवियों साहित्यकारों वाक कला प्रवीणों संगीतज्ञों को सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्र कहते हैं। विश्व की कई पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाएं भी अनंत शक्ति और कलाओं से संपन्न देवी सरस्वती की जीवन कथा का वर्णन करती है। जैसे भारतवासी शांति और शीतलता के लिए शीतला देवी को, विद्या बुद्धि कुशलता के लिए सरस्वती देवी को, निर्भयता और पवित्रता के लिए दुर्गा तथा काली को ही पूछते, इस प्रकार ग्रीस के लोग देवी एथेना को उसकी बुद्धिमत्ता और कला के लिए पूछते, रोम के लोग चंद्रलोक की देवी डायना को उसकी निर्भयता और पवित्रता के लिए पूछते। वैसे एक मिनर्वा भी है, मिनर्वा गॉडेस मिनर्वा, वो भी सरस्वती को अंग्रेजी में मिनर्वा कहा जाता है। इस प्रकार देवी सरस्वती विश्व वंद है, विश्व की सर्व सभ्यताओं में उसका गायन और वंदन है, उसका महत्व अनंत और अपरंपार है। तो कल से हम अनुभव पढ़ेंगे, सबसे पहले विश्व किशोर दाता जी का कल, और है भगवती प्रसाद जी का, बहुत सारे भाई बहनों का इसमें अनुभव है। तो हम 24 तारीख तक इसको पूर्ण करेंगे। इसमें पीछे संदेश लिखे, छह कितना दिन संदेश आए थे, कुछ दिन जो संदेश आए थे, 5-6 जो संदेश आए थे 24 जून को, 23 जून को मम्मा ने सबको अंगूर खिलाए पांडव भवन में अपने हाथों से, और 24 जून को शरीर छोड़ा। अच्छा, होम शांति।